गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री श्री प्रेमपुरी जी महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। चौथे श्लोक को पढ़ेंगे छह तक।
मया ततमिदं सर्वं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि, मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्ववस्थितः, न चाहं ते स्ववस्ति न च मस्तानि भूतानि, न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो, भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः, ममात्मा भूतभावनः यथा काशस्थितो नित्यम्, यथा काशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान्, वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि, तथा सर्वाणि भूतानि मस्तान्युत्युपधारय, मस्तान्युत्युपधारय, मस्तान्युत्युपधारय,
मस्तान्युत्युपधारय।
हरि ओम। मया ततमिदं सर्वं, मया मुझमे अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति है सच्चिदानंद घन परमात्मा, इदम यह सर्वम सभी कुछ जगत, ओ जगत जो जल के बर्फ के सदस्य है, ततम परिपूर्ण है, च और सर्वभूतानि ये जड़ चेतन जग तमाम सब कुछ मेरे अंतर्गत संकल्प के मस्थानि आधार स्थित, अहम मने मैं तेषु उनमें न अवस्थितः स्थित नहीं हूं। क्या कहा, हम उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, जगत मुझसे परिपूर्ण है, सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बात है। अभी आगे देखिए, न च मस्थानि भूतानि, च न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन्न च न भूतस्थः मम आत्मा भूत भावनः च और है भूतानि सब भूत मस्थानि मेरे में स्थित न नहीं है मैं मेरी योगम योगमाया ऐश्वरम प्रभाव को पश्य देख भूतभृत भूतों को धारण पोषण करने वाला भूत भावन भूतों को उत्पन्न करने वाला च मम आत्मा मेरी भी आत्मा वास्तव में भूतस्थ भूतों में स्थित न नहीं है। ये कृष्ण को छलिया क्यों कहते हैं यही सब बात। यथा काश स्थितो नित्यम, जैसे कि यथा आकाश स्थितः नित्यम वायुः सर्वत्र गः महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि इति उपधारय, इति उपधारय, इति ई के बाद में उ आया है, इको अनुच्छेद से ई के बाद में उसे इत्यु। यथा जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र गह सर्वत्र गमन करने वाला सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु नित्यम सदा ही आकाश स्थित आकाश में स्थित है वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति होने से सर्वाणि संपूर्ण भूतानी भूत मस्थानी मेरे में स्थित है ऐसा इति उपधारय जान। देखिए ये तो श्रद्धा का विषय है। क्या है नारायण? देखिए श्रद्धा की बात कृष्ण ने अब कही है, अब तक नहीं कही, क्योंकि अब तक जो बात हो रही थी वो तर्क से होती थी, अब ये वितर्क है, तर्क से परे है। तर्क क्या होता है? बुद्धि से होता है। कल जैसे कहा एक हृदय है एक बुद्धि है, आत्मा त्वम गिरिजामते है। तो तर्क बुद्धि से होता है, हृदय से नहीं होता है। श्रद्धा की बात कहकर कृष्ण कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं वो सोच भी नहीं सकते हमने। बात तो यह है कि जिसका हल छिपा हो, देखो पहली होती है दो तरह की, एक क्वेश्चन है उसका आंसर हो, दूसरा है कि जिसका आंसर हो ही नहीं। एक पहेली है उखाणो गुजराती में कहते हैं, उसका उत्तर हो सकता है, कुछ हो जिसका उत्तर हो ही नहीं। ये कृष्ण का जो समझाने का ढंग है उसमें तर्क को छोड़ दिए तो समझ सकते हैं। तर्क को पकड़ के रखा, बुद्धि से विचार किया, नहीं आएगा। आठ अध्याय पर्यंत कृष्ण ने जैसे बिल्ली चूहे के साथ में खेल करती है, हमारे भगवान नृसिंह महाराज ने हिरण्यकशिपु को लेकर के जैसे उससे क्रीड़ा करते रहे, ऐसे ही भगवान अर्जुन के साथ में आनंद विनोद करते रहे। अब गंभीर बात कहना चाहते हैं, क्योंकि नारायण ये ऐसा रहस्य खोजे कि उतना ही रहस्यमय हो, रहस्य का भी रहस्य। क्या कहा? ये गोपनीय, पहले ही श्लोक में कह दिया इदम तूते गुह्य तमम, रहस्य का भी रहस्य है। जितना जाने उतना ही पता चले कि हम जानते हैं। ये जब तक हमारा परिचय नहीं होता है तब तक हम दूर से किसी व्यक्ति को एक रूप से देखते हैं। जितना उनका सामीप्य होता चला जाएगा देन यू नो, अरे हम जो सोच रहे थे वो ये नहीं है, ये दूसरा व्यक्ति है। क्योंकि बाहर से जो हमारी दृष्टि है, बाहर से हमारा विचार है, बाहर से जो हमारा दर्शन है, बाहर से हमारी रुचि है, बाहर से हमारा ये उनके साथ का संबंध है, वो एक किसी से सुना हुआ, कहीं इनके बारे में पढ़ा हुआ, मगर किसी से सुना हुआ, कहीं से पढ़ा हुआ, उनके व्यवहार की रुक्षता वो बिल्कुल भिन्न है। किंतु एक मौका आता है कि उनके साथ में रहने का मौका आ जाए, उनके साथ में यात्रा करने का मौका आ जाए, उनको दिन में देखने का मौका आ जाए, रात में देखने का मौका आ जाए, अरे ये तो हमने जो सुना है वो तो गलत है। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं साधु की दिने बेलाई देखते हो भी, रात्रि बेलाई देखते हो भी। साधु को दिन में भी देखना, रात में भी देखना। रात में भी देखे तो अपने अपने ढंग रहेंगे, किंतु वो अपने ढंग में रहते हुए भी उनके भीतर का सत्व है वो कुछ पृथक है। बाहर से जो आचरण है वो आचरण कदाचित पागल के माफिक हो सकता है, परमहंस अवस्था है, किंतु अंदर का जो सातत्य है, अंदर का जो चैतन्य है, अंदर का जो रूप है, अंदर का जो स्वभाव है, भीतरी गुण है, भीतरी चेतना है, वो तो एक नहीं है, वो पृथक है। इसलिए क्या कहा कि अब जो द्वार है भगवान खोल रहे हैं वो प्रभु के प्रवेश का द्वार है, किंतु वो ऐसा द्वार है वहां प्रवेश होने के बाद में निकास नहीं है। कृष्ण तो हमें आंख देते ही नहीं, और एक बार आंख दे दिया तो फिर पल्ला छुड़ा नहीं सकते आप, वो तो खींचे हुए बंधे हुए चले आते हैं। एक बार बुला के देख तो लो, वृंदावन में बांके बिहारी जी में टेरा लगता है, पर्दा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, क्यों? ये छलिया है ना, कभी किसको आंख देंगे तो चले जाएंगे। ये बात जो है वो हृदय की है, ये बुद्धि की नहीं है। कि कृष्ण का ये जो द्वार है प्रभु का, कृष्ण अब श्रद्धा की बात जो अर्जुन से कह रहे हैं वो अब श्रद्धा युक्त कह रहे हैं। मैं गोपनीय रहस्य को कहूंगा, ये तत्व जो है वो पहले श्रद्धा के संबंध में कुछ बात समझना। क्या कहना चाहते हैं? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये बात कहने के लिए क्या कहा? श्रद्धा। तो श्रद्धा के विषय में कुछ समझना चाहिए। श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा कहते हैं हमने, आस्था कहते हैं, विश्वास कहते हैं। तो श्रद्धा में, आस्था में, विश्वास में ये एक ही है कि भिन्न भिन्न है? विश्वास तो है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, मुझको आपके चरण का भरोसा है। तन मन वारू गुरु चरणन पर, जब पाऊं दरस बलि बलि हो जाऊं, तन मन वारू, तन मन वारू गुरु चरणन पर, जब पाऊं दरस बलि बलि हो जाऊं। देखिए नारायण, हमने आश्रम में कुत्ते नहीं पाल रखे, किंतु फिर भी दो चार तो हैं। कहां से आए? अपनी खुशी से आते, अपनी खुशी से जाते, वो समझते हैं हमारा अपना आंगन है। किंतु जिस दिन हमको आना होता है वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, रोने लगेंगे, उनको पता है आप जा रहे हैं। और जब आएंगे वो उछल उछल के बात करते हैं, मेरी मां आ गई, ऐसा सोचते हैं। पेड़ों से प्यार करना, अपने घर के बगीचे को प्यार करना। जब आप बाहर जाएंगे देखना, उनकी पत्तियां उदास हो जाती हैं, डालियां उदास हो जाती है। और जब आप 8 दिन 10 दिन के बाद में आओ, बेद दिवस कलकत्ता जाने आओ ना, पछी देखना उन पत्तों में एक चमक आती है, इन पेड़ों में, इनको पत्तों में, इनकी दीवारों में, हमारे पक्षियों में, गली में रहने वाले प्राणियों में, तमाम की आंखों में। क्यों? उनकी आप में श्रद्धा बनी हुई है, उनकी आप में निष्ठा बनी हुई है, आपका उसमें भरोसा बना हुआ है, आप में उनका आस्था बना हुआ है। श्रद्धा में समर्पण है, विश्वास में समर्पण है, आस्था के अंदर में समर्पण नहीं है। आस्था में एक विश्वास है, भरोसा है, किंतु समर्पण नहीं है। श्रद्धा में द टोटल सरेंडर है, जहां बैठा वो तिते ही बैठूं, जो देवे सो खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, कहां रखेंगे मुझे परवाह नहीं, किंतु मुझे पूरा एक भरोसा है। जैसे कि हमने बात कही अस्तित्व है श्रद्धा का, तो उसके 4 प्रकार हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि 4 प्रकार ना हो तो उसके 4 स्वरूप हो सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जगत के संगठन में, जगत के ऑर्गेनाइजेशन में जो तत्व काम कर रहा है उसमें मैग्नेट है। कितनी बार हमने पत्थर फेंका उस आसमान में, सब समय में नीचे गिरा है। पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं तो अपने आप नीचे गिरते, पता नहीं युगों से ही पत्थर गिरते चले आ रहे, पत्ते भी गिरते चले आ रहे हैं। किंतु एक वो था वैज्ञानिक, पेड़ के नीचे बैठा, ओ एप्पल गिर गया, सेब गिर गया, अरे ये कैसे करके गिरा भाई? तो उसने दिमाग लगा, तो पहले भी गिर रहा था, अभी भी गिर रहा है, वो नया थोड़ा था, किंतु उसने तय कर लिया ये भूमि में ग्रेविटी है, आकर्षण है। तो आकर्षण होने से ही आपका योग बनता है, आकर्षण नहीं होने से वियोग होगा। आकर्षण होने से श्रद्धा बनती है, आकर्षण होने से प्रेम बनता है। आकर्षण नहीं हो तो प्रेम नहीं होगा, आकर्षण नहीं होने से श्रद्धा नहीं बनेगी। और आकर्षण कैसे होता है? एक साधारण पत्थर ले लो, उसमें वैज्ञानिक कहते हैं कितने अणु परमाणु हैं, करोड़ों की संख्या में है। करोड़ों की संख्या में अणु परमाणु है तो बिखर जाएं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। कहते हैं हमारी पृथ्वी है, उसके चारों ओर समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है। कितना है? बोले कि 2/3 पानी है, 1/3 पृथ्वी है। तो पृथ्वी डूब कहीं नहीं जाती भाई, वो इतना फोर्स में घूम रही है, ग्रेविटी इतना शक्तिमान कि पानी अपना स्थान में है, पृथ्वी अपने स्थान में है। किंतु इन वस्तु विषय के प्रति हमारी एक श्रद्धा कैसी हो। न्यूटन ने क्या कुछ कहा, कहा उसके पहले भी पत्थर गिरते रहे। किंतु यदि हमको एक बार देख ले, आप जो चुंबक होता है ना, वो लोहों को खींचता है। अब मुझे बात बताएं कि एक चुंबक रखा हुआ है या कुछ कीले रखी हैं, तो कीले एकदम खींच के आ जाती है उसके सामने। आप चुंबक हम देखते हैं, कीलों को देखते हैं, कील चुंबक से चिपक के देखते हैं, और कैसे चिपकी, उसके बीच में शक्ति क्या है, उसके बीच में ये क्या एक घट गया, यही तो पता नहीं है। चुंबक को देख रहे हैं, कीलों को देख रहे हैं, चुंबक को देख रहे हैं, लोहे को देख रहे हैं, लोहा है चुंबक की ओर चला गया, कैसे गया, श्रद्धा है वो देखने का कार्य नहीं है। श्रद्धा का जो परिणाम है वो दृश्यमान है। श्रद्धा का परिणाम दिखता है, वो कीले चिपक गई, खींचे हुए बंधे हुए चले आते हैं, वो आ गए, मगर वो जो दिख रहे हैं श्रद्धा क्या दिखा सकते, बता सकते हैं, घड़ी है भाई, एक एक फूल यहां रखा हुआ है दिखा सकते हैं, माइक है दिखा सकते हैं, आप श्रद्धा को बताओ नारायण, श्रद्धा ने तो क्या कहते हैं कि पदार्थ बंधा हुआ है आकर्षण से, जीवन भी बंधे हुए हैं आकर्षण से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हमारे जो समाज में जो हम लोग रहते हैं कि पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, दुकानदार है, तमाम एक दूसरे के श्रद्धा से। मुझे बात कहें, अभी हमने आ गए अहमदाबाद से यहां बंबई, वो एक ये एक कितना बड़ा है एक कागज है, वो इतना बड़ा एक टिकट था हमारे पास में, इस टिकट को जलाए तो एक चम्मच पानी गर्म नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। अभी वो जो टिकट है उसको यहां रख करके लंबे होके लेट गए। अब मुझे बात बताएं कि उस टिकट में हमको श्रद्धा है कि नहीं, क्या श्रद्धा है वो बंबई पहुंचाएगा, वो उस टिकट के पीछे अहमदाबाद से बंबई सेंट्रल तक की, दादर तक की, बोरीवली तक कितने स्टेशन मास्टर, कितने फ्लैग मास्टर, कितना सिग्नल मैन, कितना सांधे वाला, ये कितने रात भर जगते हैं आपके एक टिकट के पीछे, श्रद्धा है कि नहीं है। अरे उस हवाई जहाज में बैठते हो, लंबे पांव करके सो जाते हो, हाँ वो भोजन देते हैं, चाय पानी देते हैं, घड़ी घड़ी देते ही रहते हैं, सिनेमा दिखाते, खाना पीना देते रहते हैं, वो कभी नहीं लगता है कि हवाई जहाज में बैठने वाला कभी ये नहीं सोचता है कि ऊपर कभी रुक गया तो धक्का लगाने को बोलेंगे, तो मेरे तो ताकत नहीं होता धक्का लगाने का। हमको श्रद्धा है कि हवाई जहाज में धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, श्रद्धा है उस कागज के ऊपर में कि ये हमको बंबई पहुंचाएंगे, बिल्कुल बेखट सो जाते हैं। वो बोलते हैं भाई देखो बोरीवली आए तो जगा देना, मेरे को दादर उतरना, अरे दादर में ट्रेन खाली हो जाएगी ना रहे। श्रद्धा है वो अखबार जो है आपके पास में, कितना पेज है, बंबई समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया 16 पेज है, एक रुपया डेढ़ रुपया, आज का अखबार है उसको कल आप क्या करते हो, रद्दी, क्या करते हो, रद्दी। और रद्दी भी आजकल खरीदने वाले नहीं है, किंतु ये एक नोट है इतना छोटा सा, संभाल के रखते हो कि नहीं, हाँ। उस अखबार में से ऐसे जो एक कागज के टुकड़े हैं वो आप 64 बना सकते हो, 120 बना सकते हो, किंतु उसके कितने रंगीन, इससे ज्यादा रंगीन उधर है फोटो भी, आपकी फोटो भी हो सकती है, हमारे भी हो सकती है, रंगीन है, किंतु उसको क्या करते हैं, वो चिवड़ा बांधने के लिए, भेलपूड़ी खाने के लिए, नहीं तो पहले तो माई लोग है वो अपने बच्चों की पोटी साफ करने के लिए यूज करती थी, किंतु उसको नहीं रखते, इसको रखते हो, क्यों, इसके अंदर एक छाप लगी हुई है, सरकार की छाप लगी हुई है, इसलिए आपको इस कागज में अधिक श्रद्धा है। ये 5 का नोट, 10 का नोट, एक थोड़ा विनोद की बात कहेंगे तो, एक आदमी ने कहा आपके पास में 500 रुपया है, मैं क्यों, क्या बात है, मेरे को दो ना, 1000 का नोट है तो दो ना, अरे भाई क्यों, बोले मैं गांधी जी के फोटो कलेक्ट कर रहा हूं। श्रद्धा कहना तात्पर्य, इन कागज में मेरी श्रद्धा है, उस छोटा कागज जिसमें सो जाते उसमें श्रद्धा है, हवाई जहाज में श्रद्धा है, ईश्वर में आपको श्रद्धा नहीं। एक सोचना अपने आपको कि ये ईश्वर जो है हमारे जन्म के एक क्षण के पहले माता के स्तन में दूध नहीं था। जन्म के साथ में दूध कहां से आया है? ये नारियल जो होते हैं, ये नारियल समुद्र किनारे होते हैं, नहीं तो नारियल का पेड़ हमारे यहां लगाना होता है तो उसमें 5 किलो नमक डालना पड़ता है। जमीन को नमकीन बनाया जाए तब नारियल डाला जाए। उस नमकीन जमीन में होने वाला, समुद्र किनारे होने वाला नारियल का पेड़ इतना 25-30-40 फीट ऊंचा जाता है। इतना जमीन से इतना ऊपर जाने वाला पेड़, उसमें एक नारियल है, उसमें एक ठोस दीवार, उसके अंदर दूसरी दीवार, उसके अंदर तीसरी दीवार, उसके भीतर में एक मीठा सा पानी। ये मुझे बताओ भाई, ये कैसे आ गया बताओ तो? कितनी भी कोशिश करो, हाँ, एक ये अलमीरा के ऊपर में एक कटोरी रखो खाली, उसमें एक थाली रखो पानी भर के, उसके अंदर एक कटोरी रखो, उसमें एक पेड़ा रख दो, देखना कल सवेरे तक वहां चींटियां चली जाती है। ये चींटियां जो हैं, इन चींटियों को वे फेफड़े हैं क्या? उनको ग्रहण शक्ति कैसी है? वो कैसे करके वहां चली गई? सोचना है, ये श्रद्धा का विषय, तर्क का विषय नहीं, हृदय से जाना है। उन चींटियों को कौन बताए भाई वहां पर पेड़ा रखा हुआ है? वो पानी कैसे ऊपर करके चला गया? माता के स्तन में दूध कैसे आ गया? छोटी सी गिलहरी रहती है, हर साल आकर के हमारे कॉरिडोर है उसकी खिड़की में आकर के एक अपना घर बना लेती है, घोंसला बना लेती है। हमने कहा भाई देखो, ये घोंसला निकाला मत करो, हर साल उसको खटपट नहीं। अब उसको पता है कि यह घोंसला मेरा बना हुआ है, तो साल में 2 दफे आकर के वहां अपने बच्चों को देकर के चली जाती है। साल के साल कौन बताया उसको? बताओ, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है गाय का, हजारों गाय के बीच में भी गाय उस बच्चे को ढूंढ लेती है, बच्चा अपनी मां को ढूंढ लेता है। कौन बताया इसको? बोर्ड लगाया क्या यहां पर? बड़ा मुश्किल काम है, किंतु इसके भीतर जो चेतना है, उसके भीतर जो क्षमता है, जो ओजस है, जो तेजस है, जो प्राज्ञ है, जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो रहस्य है, उस पर श्रद्धा करना पड़ेगा। क्योंकि वो श्रद्धा दिखती नहीं है, श्रद्धा के कार्य दिखते हैं। वो चुंबक दिखता है, लोहा दिखता है, लोहा कैसे खींच गया, वो चिपक गया दिखा है, मगर उस कौन सी शक्ति, वो तो दृश्यमान नहीं है, किंतु दृश्यमान नहीं होते हुए भी है, तभी तो होगा, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए दो पदार्थ के बीच में जो आकर्षण है, श्रद्धा के बीच में जो आकर्षण है, वो चुंबकीय आकर्षण। देखिए, वो जापान में हम रहे, एक बहुत बड़े जैन गुरु रहे जापानीज, उनका है कोई अमेरिकन चेला था, कोई बड़ी अमेरिकन कंपनी का फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर रहा, बाद में जैन मॉन्क बन गया। उसने अपने गुरुजी से पूछा, ये भारत से एक सन्यासी आए हैं और प्राणायाम योग ध्यान का सत्र 7 दिन चलाएंगे, मैं जाना चाहता हूं। हाँ, खुशी से जा। बोला जा, बिल्कुल जा। तो बोल दिया दो मुंह अड़गत को साहे मस्ता, ऐसे बोल दिया, धन्यवाद ऐसे बोल दिया। फिर भोजन करते करते उस चेले ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये जैन में और योग में फर्क क्या होता है? इसे पूछा, गुरु ने जवाब नहीं दिया, एक लाठी उठा के जोर से मार दिया उसके पीठ पर। हाँ, हड़बड़ा गया, क्या हो गया है? भारत से एक योगी आए हैं, योग ध्यान सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, आपकी अनुमति हो तो मैं 7 दिन के लिए जाऊं। खुशी से जाओ, ये कहना प्रातः काल में मध्यान्ह में यही शिष्य गुरु के साथ में बैठकर भोजन कर रहा है। एक प्रश्न पूछा, गुरु जी जैन और योग में फर्क क्या है? गुरुजी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, लाठी मार दिया, हड़बड़ाया गया, खाना नहीं खा सका, क्या करना पता नहीं। बगीचा में जाके बैठा, पर देखा कि उनके यहां पर एक पालतू कुतिया भी है, उसके 7 पिल्ले थे छोटे छोटे, तो एक बहुत बड़ी परात में दूध डाला, लो तुम लोग तो पियो। वो जो पिल्ले दूध पी रहे थे, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो भी वज्रासन में बैठ के अपना सिर उसके मुंह उस परात में डालकर वो भी पीने लग गया। एक परात में चारों ओर में 7 छोटे छोटे पिल्ले दूध पी रहे, यह भी पी रहा है। गुरु भोजन करके बाहर आए तो उन्होंने फोटो खींची उसके। फिर वो जो पी चुका दूध, पिल्ले पी चुके, बोला हे खोका, हे बच्चे इधर आओ, तुमको जाना है ना उधर, कब जाओगे? बोला महाराज मैं जाने के पहले पूछो पूछो क्या बात है, सवेरे आपने हां कहा था अभी बोल रहे हो जाओ, और बीच में जब मैंने पूछा जैन और योग में फर्क क्या है तो लाठी मार दिया था। बोले मूर्ख जैन और योग दोनों में फर्क होता ही नहीं है, जैन ही योग है योग ही जैन है। ये प्रश्न पूछना ही तेरी मूर्खता थी, किंतु उन पिल्लों को जो तू दूध दे रहा था कुत्तों के बच्चों को स्वान शावकों को उनके साथ में तुम भी दूध पी रहे थे, जब तुमने इन दोनों के बीच में जब भेद है प्रश्न पूछने के लिए तो पूछ लिया था, वो तुम्हारी बुद्धि थी, किंतु हृदय के साथ में तुमने जब उनके साथ में दूध पी लिया तो मैंने सोचा कि तेरा तर्क तो अलग है किंतु तेरा दिल जो है उसमें भेद नहीं है, इसलिए तू जाने के लिए योग्य है। हम कृष्णा बहुत स्पष्ट करते हैं इस वस्तु विषय को, हृदय हृदय होता है और बुद्धि बुद्धि होती है, हृदय से जो बात आएगी वो पक्की होती है, बुद्धि से जो बात आती है वो कच्ची होती है। क्योंकि एक बार ऐसी बात है कि एक भगवान बुद्ध बैठे हुए थे तो उनके पास में एक हजारों शिष्य रहे, तो एक युवक ने आकर के उनको प्रणाम किया गोदी में सिर रख दिया। बुद्ध ने बड़ी ही करुणा के साथ में उसके सिर में हाथ फिराया, धीरे से ऊपर देखा, उसने इतने प्यार से देखा ऊपर, जितना ऊपर प्यार से देखा बुद्ध ने उसको फिर से गाल को ऐसे किया, उसने फिर से उसके चरणों में गोदी में सिर रख दिया और वो चला गया। लोग बाग देख रहे क्या हुआ, कोई आया न बात न चित न प्रश्न न उत्तर, हड़बड़ाया हुआ आया था, गोदी में सिर रखा था, करुणा और वात्सल्य से बुद्ध ने उसके सिर में पीठ में हाथ फिराया था, और वो उतना वात्सल्य था कि वो युवक अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने गोदी में ही रखा हुए सिर को उठा करके बुद्ध की करुणा से भरी आंखों को देखा, चेहरे को देखा, और तब बुद्ध ने उसके दोनों गालों को सहारा, फिर उसने अब गोदी में सिर रख दिया और वो चला गया। तो पूछे क्या हो गया, ये लोग समझ नहीं पाए, किंतु ये जो इंसान था बड़ा लुटेरू था, बड़ा डकैत था, बड़ा हिंसावादी था, उसने क्या किया, दूसरे दिन जाकर के उसी दिन जाकर के क्या किया, उस गांव की गलियों में जाकर भिक्षा मांगने लग गया। वो कौन देता है भिक्षा, लोग जानते हैं तो चोर डकैते लूटे रहे, लोग उसको पत्थर मारने लगे, कुछ नहीं बोला, ये चारों ओर से पत्थर इतने लगे, रास्ते के एक कोने में ऐसे जाकर के गिरा, अभी प्राण चले जाएंगे। उस समय बुद्ध भी भिक्षा लेने निकले थे, बुद्ध जब भिक्षा लेने गए तो उस आदमी को देखा, पीड़ा बड़ी हो रही है। उसने कहा जिसको पीड़ा हो रही थी वो तो आपके चरणों में कब का ही मर गया था, अब जो बचा है वो एक आनंद स्वरूप, एक मूर्त स्वरूप, एक चैतन्य स्वरूप है, तकलीफ तो होती होगी। बोले जो देह में रहे तो उसको तकलीफ होगी, देह में नहीं रहे तो तकलीफ क्या होगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा तुम्हारे मन में एक प्रश्न था ना, ये हड़बड़ाया हुआ युवक आया था, उसने क्या पूछा था, हमने क्या उत्तर दिया, पूछने के लिए कोई शब्द की आवश्यकता नहीं है, शब्द किसको चाहिए, बुद्धि को चाहिए, हृदय को नहीं चाहिए। हृदय को केवल क्या चाहिए, मैं अपने हृदय को आपके हृदय के सामने खड़ा कर दूं। हृदय की भाषा मौन की भाषा होती है, और तर्क की भाषा है वो एक, उसको वैखरी वाणी कहते हैं, तर्क शोर करता है, हृदय मौन धारण करता है। कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन तू देख, तू मुझे पूछ रहा है कि ये मैं कहां हूं, अरे आकाश के भीतर जो वायु उत्पन्न हुआ है वो आकाश के भीतर वायु है, सारी सृष्टि है वो मुझसे उत्पन्न हुई है, सृष्टि में मैं हूं, मुझ में सृष्टि नहीं है। आप ध्यान दें, एक बहुत बड़ा एक वर्तुल बना लें, सर्कल बना लें, उसके अंदर दूसरा सर्कल भी बना लें, अब बड़े सर्कल के बीच में, बड़े वर्तुल के बीच में, बड़े चक्र के बीच में, बड़े घेराव के बीच में एक छोटा घेरावा है, बड़े चक्र के बीच में छोटा चक्र है, बड़े वर्तुल के बीच में छोटा वर्तुल है, बड़े सर्किल के बीच में छोटा सर्किल है, किंतु छोटे सर्किल के बीच में बड़ा सर्किल नहीं है। ये क्या क्या कहना है, इन लोगों को भरोसा करना है हमको, एक श्रद्धालु है। क्या श्रद्धा बनेगी? एक दूसरे के प्रति जब तक हमारा संपर्क अनन्य नहीं हो जाएगा, कृष्ण ने पहले भी आगे कहा है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वः। अनन्य, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। कल दोपहर एक युवक मिलने के लिए आया था, हमारे बंबई आने के 15 दिन पहले कहा, मैंने सुना हूं आप आने वाले हैं, मैं आपके पास में मेरे दिल की व्यथा कह करके आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। हमने कहा ठीक है, कहिए भाई क्या कहना चाहते हो। स्वामी जी मेरी ये समस्या, ढेरों समस्या का। हमने कहा लिख के ले आना, तो लिख के लाया था वो। देयर इज नो एंड ऑफ हिज क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। करते क्या हो? भगवान का नाम। मैंने सीधा, भाई हमारे बाबा जी के पास में क्या यही है, भगवान का नाम लेते हो क्या? बोले हाँ। क्या? मैं कामदेव सूक्त पढ़ता हूं, बताओ। मैंने कहा मैंने सुना हूं कोई नारायण कवच पढ़ता है, कोई तो सुदर्शन कवच पढ़ता है, तो तुम ये कामदेव क्यों पढ़ते हो? हनुमान चालीसा? नहीं ना स्वामी जी, हम तो गृहस्थी है ना, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ेंगे? मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, मैं ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहता। बुद्धि का कैसा कवाड़ा हो रखा है बताओ। मैंने कहा तो फिर श्री सूक्त का पाठ करो। मुझको लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसे है, आई डोंट केयर फॉर दिस लक्ष्मी। अरे भाई तुम्हारी लक्ष्मी क्या, खाली पैसा ही लक्ष्मी नहीं है नारायण, तुम्हारी बुद्धि भी एक लक्ष्मी है, तुम्हारा व्यवहार लक्ष्मी है, तुम्हारे संतान लक्ष्मी है, तुम्हारी विद्या लक्ष्मी है, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी है, तुम्हारा घर जो है वो भी लक्ष्मी है, तुम्हारा विवेक लक्ष्मी है, तुम्हारी विजय लक्ष्मी है। लक्ष्मी बोलने से खाली पैसा मत सोचो, वो आदि लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, धैर्य लक्ष्मी है, ये तमाम लक्ष्मी है। गोधन गज धन वारी धन और रतन धन कान, तमाम धन है। जो तुम्हारी समस्या है उसकी जड़ क्या है? जड़ के भीतर में अपने आप में ही श्रद्धा नहीं। हम ईश्वर में श्रद्धा रखें कि नहीं, कम से कम अपने आप को तो श्रद्धा रखो। हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें कि नहीं? अरे हम समाज के भीतर रह करके समाज के साथ में कितनी छल, कितनी प्रवंचना, कितना धूर्तता करते हैं, इससे अधिक हमें अपने आप को ही जानना है। बी ट्रू टू दाई ओन सेल्फ। मैं कम से कम अपने आप को तो वफादार रहूं, मैं पत्नी को वफादार हूं कि नहीं, पति को वफादार हूं कि नहीं, अपने काम धंधे में वफादार हूं कि नहीं, सन्यासी अपने सन्यास को वफादार है कि नहीं, प्रामाणिक जीवन बहुत जरूरी बात है। हम अपने आप को टटोलें। परसों क्या कहा था? स्वाध्याय, स्व का अध्याय करना है, स्व का नियंत्रण करना है, स्व का पृथक्करण करना है, स्वात्मा में रहना है। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अखबार के साथ, टीवी के साथ रहते हो, अपने साथ रहने का प्रयत्न करो तो श्रद्धा बनेगी अपने ऊपर में। हमारा जो एक श्रद्धा का विषय है वो कहां श्रद्धा बनती है? हमारी श्रद्धा कहां है? ये हमने हमारा प्रेम कहां है? श्रद्धा और प्रेम अलग है। ये प्रेम जो है अगर वो निष्कपट हो, निष्पाप हो, वो शारीरिक नहीं हो, वो शाश्वत हो जाएगा। किंतु अगर प्रेम जो है उसमें लेन देन है, बनियागिरी है, तो प्रेम नहीं है, वो वासना हो जाएगा, वो बिजनेस हो जाएगा। वो प्रेम में आदान प्रदान में कोई आकांक्षा नहीं है। आमी तुमार तुम्ही आमार, तुमार छाड़ा आमिर की चुनाई, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, तुम्हें छोड़ करके मेरा कोई भी नहीं है। जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही छोड़ू रे, तोरी प्रीत छोड़ी कृष्णा कौन संग जोड़ू रे। तुमने छोड़ दिया चिंता नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि भाई एक मार्जार न्याय है, एक मरकट न्याय है। मरकट न्याय क्या होता है? बंदरिया का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है, बंदरिया यहां कूदती है वहां कूदती है, कभी बच्चा गिर भी जाए ऐसा भी हो सकता है। किंतु बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता है, बिल्ली का बच्चा केवल म्याऊं म्याऊं करता है, मां ही उसको अपने मुंह से उठा करके लेके जाती है जहां जाए। मेले में गए तो अगर बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ा है तो गड़बड़ है, मेढ़े की भीड़ भाड़ में वो हाथ छूट सकता है। एक बार पिता ने बच्चा का हाथ पकड़ लिया, बस सौंप दिया इस जीवन का। तुम सौंप दिया, तुमने सौंपा, उसने स्वीकार किया क्या? ये गहन बात है। कब स्वीकार करेंगे? संपूर्ण शरणागति हो तब, लेन देन नहीं हो तब। प्रेम जो है, श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो कैसे हो सकता है? जब मेरे उसके बीच में कोई स्वार्थ नहीं है तब, संपूर्ण शरणागति है तब। एक बात अपने आप को सोचना, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि ये श्रद्धा जो है, विश्वास है, प्रेम है, वो केवल पुरुष और स्त्री के बीच में नहीं समझना चाहिए ना। कल मुझे कुछ लिख करके पोस्ट करना बहुत जरूरी था, ठीक से टेबल कुर्सी में लिखने के लिए सुविधा हो, तो मैंने हमारे नीचे जो दफ्तर है वहां पर एक कोने में प्रकोष्ठ में बैठ के लिख रहा था। साथ में ही ये महिला मंडल के सदस्य आए, कुछ गपशप कर रही थी, तो उस गपशप में जो कान में आया बड़ा विचित्र था। तो किसी ने ऐसा कह दिया कि एक व्यक्ति ने इश्तेहार डाला कि मेरी पत्नी गुम हो गई है, गुमशुदा की तलाश, मेरी पत्नी गुम हो गई है, नाम पता ये है, छोटू ये है, तो कोई मिले तो मेरे को सूचना दे। तो अपनी पत्नी की सूचना नहीं आई, किंतु एक 50-75 उसके पास में चिट्ठी आ गई, हमारे पास पत्नी है, तुमको चाहे तो हमारी पत्नी लेकर के जाओ। ये एक कोई विनोद कर रहे होंगे ये लोग। तो दूसरी महिला क्या कर रही थी, ये भी एक महिला है, महिला मंडल में क्या होता है देखो। तो दूसरी महिला क्या कर रही है कि किसी एक पति को पत्नी ने कहा 28 साल हो गए मैं ही आपके साथ रह सकती हूं। दूसरे ने कहा जाके तो देख, दूसरा कोई 28 दिन नहीं रखेगा, मैंने तुझे 28 साल तक रखा है, यह प्रेम नहीं है ना। दाम्पत्य जीवन में नोकझोंक तो होती है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने भी रुक्मणी परिणय नाम के प्रकरण में श्रीमद् भागवत जी में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया वेदव्यास जी महाराज के लेखन कार्य में, कि श्री भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, क्योंकि रुक्मणी जी को एक बार अहंकार हुआ है, आई एम समथिंग, 16108 में मैं कुछ विशेष हूं, आई एम विशेष। तो भगवान ने थोड़ा उसको थोड़ा अभी पाठ पढ़ाना चाहिए। तो भगवान कहने लगे बहुत दिन से हम सोच रहे हैं आपसे कुछ बात करें, कुछ कहें, कुछ कहें, कुछ कहें, कुछ बन नहीं रहा है, सोचा आज कह दें। देव प्रभु कहिए क्या बात, नहीं छोड़ दीजिए फिर कभी कहेंगे, नहीं नहीं प्रभु कह दीजिए, नहीं नहीं कभी फिर कहेंगे, नहीं प्रभु कह दीजिए, अरे कह दें आपको दुख हो जाएगा। तो रुक्मणी जी को 10 पुत्र हो गए हैं, तमाम रानी को 10-10 पुत्र हो गए। इनके बाद की ये कथा है जहां पर कृष्ण भगवान रुक्मणी जी को कहते हैं देखो भाई सुनो, हम तो क्षत्रिय नहीं है, न हम राजा हैं, न हम गोकुल में राजा बने, न मथुरा में राजा बने, न वृंदावन में राजा बने, हमारा चांस ही नहीं, हायरार्की बहुत बड़ी, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे पिता वसुदेव जी हैं, अग्रसेन भी है, सब लोग हैं, वो लोग राजा बने, हम कहां बनेंगे, हम न तो हम राजा बनेंगे ना तो हम क्षत्रिय हैं, हमें महिलाओं को कैसे प्यार करना, दुलार करना, समझाना पटाना हम जानते नहीं। किसी एक ब्राह्मण ने आकर के आपको कह दिया ये कृष्ण है, तो आपने हमको चिट्ठी लिख दी, हम क्या करते भाई, चिट्ठी लिख दी तो हमको आना चाहिए, इसलिए हम आ गए आपको ले आए। वैसे तुम्हारा भाई तो चाहता नहीं था, वो चाहता था कि तुम्हारी शादी शिशुपाल से हो। हम सोच रहे हैं कि अगर भी अभी भी आपके मन में ऐसा है ये कि हमने कृष्ण से शादी करके क्या गलत काम कर दिया, कहीं और जा सकती हो, किसी और से शादी करना चाहो तो जरूर करो, कन्यादान हम करेंगे। इतना सुनते सुनते भागवत जी में कहा कि रुक्मणी जी का जो केस था वो सब खुल गया, कंचुकी बंद था वो भी खुल गया, आंख में अश्रू आने लगे, आंख में जो काजल लगा था वो छाती में आ गया, छाती में केसर था वो काजल में केसर मिश्रित नाभि तक आ गया और रुक्मिणी जी गिरने लगी। भगवान उनको उठा लिए, अपने उत्तरीय से थोड़ा हवा करने लगे और गोदी में, अरे देवी हम तो थोड़ा विनोद कर रहे थे, अरे थोड़ा देखिए आपको इतना बुरा लग जाएगा। थोड़ी जब होश आई तो होश आते रुक्मिणी जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, आप ही है कमल नयन है, पीतांबर धारी हैं, आप गरुड़ ध्वज हैं, आप करुणा निधान है, क्या क्या प्रशंसा की। तब कृष्ण परमात्मा कहते, अरे इतना मीठा मीठा सुनने के लिए तो विनोद किया था, बताओ हाँ घर में जाकर के बोलना मैडम को, तारे कहीं जाऊ तो जा, हमें करिए गड़बड़ हो जाएगा। तो विनोद तो हमारे जीवन में हो, नोकझोंक तो हो, किंतु वो कैसी, जिस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, मान लिए वो शादी में आकर के आई है, पति पत्नी शादी में आकर के अपने घर में शादी है और हमारी पत्नी के भाई के शादी हो रही है, कितना श्रृंगार कर लेती है, 50,000-60,000 का एक बनारसी सिल्क पहन लेती है और कान में बहुत गहना पहन लेती है, नाक में पहन लेती है, साउथ इंडियन रहे तो दोनों और तीन यहां पर तांत लगा लेती है, यहां पर इतना चूड़ा सर पहन लेती है, कमर में कमर पट्टी पहन लेती है, यहां तक आजकल तो यहां से यहां तक सोने के गुलाब के फूल बंधे रहते हैं, वो तमाम है। और इत्तेफाक से क्या हुआ, घर में आकर के वो हार्ट फेल हो गया, इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, सिर के अंदर में वेणी गजरा डाला हुआ, हार्ट फेल हो गया। अब मुझे बताओ कि वो जो कांजीवरम की साड़ी पहन करके रही थी और उन्होंने 1.5 किलो सोना अपने बदन में रखा था और हीरा कितना जड़ा हुआ है, तो सवेरे जब संस्कार करेंगे तो इन हीरो के साथ में कांजीवरम के साथ में करेंगे क्या, बोलो तो, और सब निकाल लेंगे। आपका प्रेम किससे है, अपना पत्नी से कि सोने से गहने से। जब तक जिंदा थी तब तक तो हे मेरी माया, जगदम्बा, गीता, सीता, सावित्री, जो कुछ भी हो, कलावती, लीलावती, तुम हमारी थी, किंतु अब उसको तो ओम तत्सत निकालो। जो हमारी प्रेम है, हमारा श्रद्धा है, वो देह तक सीमित रहता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता। अगर आत्मा तक पहुंच जाएगा नारायण, वो क्या हो जाएगा, एक कल्याण हो जाएगा। कृष्ण जो बात कह रहे हैं उस बात में जो एक विभिन्न दिशा आ रही है कि मैं सबके भीतर हूं, सब कुछ मेरे भीतर नहीं है, वो क्यों ऐसी दो विरुद्ध बात, विरुद्ध बात नहीं है, थोड़ा समझना चाहिए उसको। ये यहां से यहां तक एक स्टेज है, तो हमारा ये तो है उत्तर है तो ये दक्षिण है, तो ये उत्तर है कि दक्षिण है, अरे वो एक ही स्टेज है। एक रस्सी को खोल लो, रस्सी को खोल लो तो बोलेंगे ये रस्सी का पूर्व है, रस्सी का पश्चिम है, अरे रस्सी को कुछ भी नहीं है, पूर्व पश्चिम अपने लिए है। हम कहते हैं कि मेरा जन्म भी है, मेरे मृत्यु भी है, मैं जन्म भी हूं, मैं मृत्यु भी हूं, तो तुम जन्म हो कि मृत्यु हो, जन्म आनंद है, जन्म में शंख बजता है, जन्म में नगाड़ा बजता है, जन्म में मिठाई बांध दिया और रोने में तो मरने में तो रोना धोना है, तो जन्म मृत्यु एक कैसे हो गया। अरे जन्म चालू हो गया तो मृत्यु जुड़ी हुई है, और रस्सी इधर से बगड़ा तो उधर भी है, एक चादर को यहां से खींचो पीछे वाला भी खींच के चला आएगा, सूर्य उदय हुआ तो सूर्य अस्त है, प्रकाश और अंधकार, जो प्रकाश है वही अंधकार है, अंधकार है प्रकाश है, अंधकार को प्रकाश से अलग नहीं कर सकते, प्रकाश को अंधकार से नहीं अलग कर सकते। मुझे बात बताएं कि अगर हम कहते हैं कि ये सूर्य उदय हुआ तो सूर्य उदय हुआ कि अंधकार हुआ, अंधकार का गमन हुआ कि प्रकाश का प्रारंभ हुआ। अरे अंधकार का गमन नहीं होने से प्रकाश का प्रारंभ नहीं है, और प्रकाश का गमन नहीं होने पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको आप भिन्न कर ही नहीं सकते। जन्म है तो मृत्यु है, आरोह है तो अवरोह है। तुम सीढ़ी में नीचे रख करके ऊपर जाते हो, अब कहते हो मुझे ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाला सीढ़ी नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है। तो कृष्ण को समझने के लिए हमें तर्क नहीं, हृदय चाहिए, एक भाषा चाहिए, एक मौन चाहिए, एक आत्म श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, शरणागति चाहिए और गाभीर्य चाहिए। छलना नहीं चाहिए, छिछलापन नहीं चाहिए, अंदर तक चले जाना चाहिए। बड़ी जरूर बात है। वो कहते हैं कि एक आपके घर में गैलरी है क्या? है गैलरी। मान लीजिए कि ये हमारे यहां छत है, प्रेमपुरी के ऊपर में छत के ऊपर में भी बांध के रख दिया है भंडारा करने के लिए। हाँ, हर इंसान के घर में कोई छत, कम से कम आंगन। आजकल तो घर बंबई में आंगन ही नहीं होता है। कल ये इंडस, ये जो टावर लगाते हैं ना, टावर, टेलीफोन टावर, तो टेलीफोन टावर का रीजनल डायरेक्टर है, हमारा पुराना स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। तो स्वामी जी मेरे घर चलिए। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहाँ? दिवाली जाना है। तो रास्ते में हमारे एक पुराने दोस्त हैं, तो शरीर अच्छा नहीं है, 2-2.5 साल हो गया बीमार है, हॉस्पिटल में देखते चलेंगे। सूचक ने दिया, अनिल भाई ने दिया, ठीक है। उनका आंगन भी देखा। अरे कैसा है स्वामी जी, बंबई में आंगन वाला घर भी होता है क्या? बंबई में आंगन वाला घर भी होता है क्या? अब देख लो, जहां आंगन है तो उसके ऊपर आकाश होता है कि नहीं, बोलो? जहां आंगन है उसके ऊपर आकाश होता है कि नहीं? हो गया। आंगन है तो उसको दीवार भी होती है कि नहीं, बोलो? होती है। तो ये आंगन जो मेरा आंगन है उसके ऊपर जो आकाश है, तो वो बोलता हूं ये मेरा आंगन का आकाश। क्या बोलते हैं? मेरे आंगन का आकाश। और पड़ोसी का जो आंगन है उसके बीच में हमने क्या किया? दीवार खड़ी कर दी। ये मेरा आकाश, ये तेरा आकाश। वो आकाश को कोई तकलीफ है क्या, बताओ तो? आकाश को कोई कष्ट नहीं है, आकाश को विभाजन ही नहीं है। विभाजन तो हमने नीचे किया है, आकाश को पता भी नहीं होगा शायद। तो वो गुजराती बोलते हैं आकाश ने कोई काश नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। आकाश में सूर्य है, आकाश में चंद्र है, आकाश में ग्रह है, आकाश में नक्षत्र है, आकाश में आंधी है, आकाश में तूफान है, आकाश में मेघ धनुष है, किंतु आकाश सबसे भिन्न है, आकाश को कोई तकलीफ नहीं। ऐसे ही हमारे भीतर भी एक चिदाकाश है, यहां पर भी राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर है। मुझे पता नहीं, एक कचहरी होती है ना, संगीत की कचहरी, उसमें तबला बजता है, मृदंग बजता है, वीणा बजती है, हारमोनियम बजता है, पखावज बजता है, खंजरी बजती है, गंजेरा बजता है, सहनाई बजती है, वायलिन बजता है, तुमरू बजता है, इतने 50 वाजिंद्र बजते रहते हैं, किंतु उनके पीछे 2 आदमी तानपुरा बजाते रहते हैं। वो तानपुरा सड़ज ऋषभ पंचम बजाते, ये कितना आरोह अवरोह होता रहे, किंतु वो सड़ज ऋषभ पंचम है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, उसको बोलते हैं श्रुति। वो श्रुति अगर गड़बड़ हो गई तो कभी कभी रविशंकर जी है सितार बजाते बजाते एकदम रोकते थे, लाओ तानपुरा, उसको थोड़ा ठीक करेंगे। श्रुति को, वो श्रुति जो है वो हमारा एक स्थिरता है, वो स्थिरता हमारे भीतर है। वो क्या है? आत्मा का चैतन्य की स्थिरता। आत्मा के चैतन्य की स्थिरता, वो चंचलता कहां होती? चित्त में चंचलता, आत्मा में थोड़ी होती है, किंतु आत्मा को भी विचलित करने वाली क्षमताएं होती हैं, जो आत्मा को क्या, ये राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है। आज आपने मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचाया है। ये दिल को क्यों दुख पहुंचाया? आपका व्यवहार ठीक नहीं भाई, आपने ऐसा बोला क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके भीतर में जो चैतन्य है उसको नहीं देखते। चैतन्य को जब देख लेंगे फिर ये बाह्य जो तमाम गौण हो जाएगा। फिर कृष्ण के प्रति हम कभी तर्क नहीं करेंगे, कृष्ण की बात में विश्वास करेंगे। क्या कहा कि श्रद्धा का विषय है जो कि एक बहुत बड़े ही एक संत रहे और विदेश में रहे, बकोचू कहते हैं उनको, बकोचू। वो बकोचू एक संत बैठे थे, तो उस समय में एक इंसान आ गया, तो आकर के उनको बोला प्रभु मेरे दिल में एक आकांक्षा है। हाँ बोलो। मैं ईश्वर की प्राप्ति कैसे करूं? क्या बोला? ईश्वर की प्राप्ति कैसे करूं? संत खड़े हो गए खिड़की के पास में, खड़े होकर के क्या बोले? देखो सूरज ढल रहा है, अभी शाम हो जाएगी। फिर आकर अपने जगह में बैठ गए। महाराज मैं पूछ रहा हूं कि मैं ईश्वर की प्राप्ति कैसे करूं? मैंने खिड़की में से अभी झांका था, अभी सूरज ढल जाएगा, शाम होने वाली है। उठ के चला गया वो।
साथ में एक इंसान बैठा हुआ देख रहा है, अरे वो पूछ रहा है ईश्वर की प्राप्ति कैसे करूं, उसका तुक क्या है। कल रात हमने राजू भाई से पूछा फला फला आदमी का प्रवचन कैसे लगता है, बोले कि महात्मा लोग हैं गंभीर बात करते हैं, ये थोड़ा तुक मिला के बात करते हैं। तो तुक, तो इस तुक क्या है भाई इसका भी हा? क्योंकि 25 साल से सुन रहे हैं ना, तो उनको पूछना पड़ता है वो तुक क्या होता है भाई। हम पूछ रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बताओ, बोले हमने खिड़की में से देखा सूरज ढल रहा है अभी शाम हो जाएगी। दूसरा आदमी बुलाए, उसने पूछा क्या आपने जवाब क्या दिया, बोले देख तुमने नहीं पूछा है उसने पूछा था, उसने जो पूछा था उसका जवाब उसको मिल गया, तुम्हें क्या तकलीफ है। द्वाभ्याम तृतीयो न भगवान राजन, तुम पूछते थे तो तुम्हारी चेष्टा अलग होती थी, तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हारी आस्था नहीं है। वो एक श्रद्धा के साथ में आया, विश्वास के साथ में आया, शरणंगति का भाव लेके आया, और जिस भाव में उसने झोली फैलाई उसमें कुछ डाल दिया तो उसको उसमें खुशी है। थोड़ी देर के बाद में महात्मा जी उठे बाहर गए, देखा एक पेड़ के नीचे इंसान बैठा हुआ है, कौन सा जो पूछ के गया था, महाराज ये ईश्वर को कैसे प्राप्त करो। गुरुजी ने क्या कहा, खिड़की में ओ सूरज ढल रहा है अभी शाम हो जाएगी, सूरज छिप रहा है अभी शाम हो जाएगी, वो शांत बैठा है, चेहरे पर कोई व्यग्रता नहीं कोई आक्रोश नहीं, एकदम शांति है। गुरुजी उसके पास बैठे रहे देखते रहे, कोई हिलने वाला है कोई सांस चल रही है, वो गहन शांति में है। वो साथ में बैठा हुआ इंसान भी गया, ये क्या हो रहा है देखे तमाशा। गुरुजी ने उसके शरीर को स्पर्श किया, धीरे से ओंकार का नाद किया, बड़े प्यार से आंख खोली दंडवत प्रणाम कर दिया उसने। गुरुजी बोले क्या कर रहे हो, आपने क्या कहा था, वो ठीक बुझ गया हूं। देखो तुमने भी सुना था प्रश्न, तुमने भी उत्तर सुना था, तुम नहीं बुझे हो तुम नहीं समझे हो, ये समझ गया क्योंकि श्रद्धा लेके आया था विश्वास लेके, क्या समझा बताओ। बोले यही समझा था कि जीवन की शाम ढल रही है, अभी मौत तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, अब तक तो जो बर्बाद हो गया अब बाकी क्षण है उसको संवार ले, इसलिए मैं बैठ करके प्रभु चिंतन कर रहा हूं। फिर वो आंख बंद करके बैठ गया, गुरुजी तो चले गए, और वो आदमी जो बैठा है वो तो बैठ गया किंतु दूसरा आदमी बैठा रहा, अरे कभी तो उठ के जाएगा ये, एक घंटा दो घंटा रात भर वो ऐसे ही रहा स्थिर, वो दूसरा आदमी भी ऐसे बैठ के देखता रहा। सवेरे गुरुजी आए, फिर देखा पहला वाला तो बैठा है दूसरा वाला भी बैठा हुआ है, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, बोले मैं देखना चाहता हूं इसके दिमाग में क्या गोबर भरा है, देख पूछ ले। उसने हिम्मत नहीं किया, गुरुजी ने फिर उसको स्पर्श किया, ओंकार करके जगाया, बोले बेटे क्या हो रहा है, बोले सूरज निकला हुआ है सवेरा हो गया है, क्या हुआ, बोले निराश हो गया था अब आशा बनी हुई है और शेष जीवन है केवल ईश्वर के साथ में रहूंगा, ईश्वर के अतिरिक्त किसी के भी साथ में नहीं रहूंगा। हमारे जीवन में एक घटना ऐसे घट जाए, एक क्षण ऐसे हो जाए जिसमें हम अनन्य शरणागति को स्वीकार कर सकते हैं। हमारे यहां कृष्ण जो हैं एक प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण एक सवाल देते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन जो अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत परिपूर्ण है, सब भूत मेरे में स्थित हैं, मया कृतमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते सव्यवस्थितः, और मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह जगत परिपूर्ण है, सब भूत मेरे में स्थित है, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। क्या कहा, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमान, पहले कहा न चमस्थानि भूतानि पश्चिम योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना, अरे भूत सब मेरे में स्थित नहीं है,
मेरे योग सामर्थ्य को देख, भूतों को धारण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है, मैं सब में होते हुए भी सबसे पृथक हूं। ये बात परमात्मा समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक गहन बात समझाना चाहते हैं। कल प्रातः काल फिर मिलेंगे और आज शाम को भी मिलना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आपके भीतर बसी हुई परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।